नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में क्या यह देश संविधान से चलता है। यह देश संविधान से चलता है, यह एक लाइन जो हम हर दूसरे व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं। संविधान पर इतनी आस्था के बाद भी देश में संवैधानिक मूल्यों की भावनाओं का अभाव है। संविधान के प्रति पैदा हुए इस अभाव के भाव के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो हर एक बात पर कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। आज समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु सर जुड़े हुए। रघु जी ठाकुर सर, मोबाइल पे स्वागत सर आपका।
ये नमस्कार योगी जी, आप सबके स्वागत है, आपको धन्यवाद।
जी सर, सर क्या यह देश संविधान से चलता है, कितना सही या गलत देखते हैं सर?
देखिए, संविधान से चलना चाहिए ये तो सब मानते हैं, पर चलता नहीं है।
जी
ये संविधान जो है वो खाली लिखे हुए शब्द नहीं है,
जी
बल्कि उनके बीच में जो छिपी हुई एक भावना है
जी
वो भावना महत्वपूर्ण है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, शब्द के साथ साथ भावना भी महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से शरीर और शरीर की आत्मा ये दोनों जरूरी होती हैं, उसी प्रकार से संविधान के शब्द और संविधान की आत्मा ये दोनों जरूरी होती हैं। तो आजकल जो भी सरकारों में जाते हैं वो लोग संविधान की दुहाई तो देते हैं, परंतु वो उनके ऊपर वास्तव में जो भावनाओं से अमल होना चाहिए वो नहीं करते। अब इस बार तो बड़ा विचित्र हुआ, 26 नवंबर को संविधान दिवस था
जी
और प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात थी उस दिन चांस इतवार भी दिन था। इस इतवार के दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जब सारा हिंदुस्तान संविधान दिवस मना रहा था,
जी
महामहिम राष्ट्रपति जी भी संविधान दिवस में शामिल हो रही थी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में एक भी शब्द संविधान के बारे में नहीं बोला, न उसकी कोई चर्चा की। तो इसका मतलब है कि संविधान को आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से ओझल करना चाहते हैं और उसकी चर्चा से बचना चाहते हैं। दूसरे, संविधान के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के ऊपर क्या वास्तव में सरकारें कोई अमल कर रही है या प्रतिपक्ष कोई अमल कर रहा है या करना चाहता है। आज जो लोग प्रतिपक्ष में हैं वो लोग भी पिछले वर्षों में सरकारों में रहे हैं,
जी
परंतु उनने भी अपनी सरकार में रहते हुए संविधान की जो भावनाएं हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया। बल्कि संविधान और संविधान के तहत बनाए हुए जो कानून कायदे हैं उनको कैसे दुरुपयोग कर इसके रास्ते खोजे। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक एंटी डिफेक्शन बिल है।
जी
अब एंटी डिफेक्शन बिल है, इसका जो इस्तेमाल पिछली सरकार में कांग्रेस सरकार में जमाने में किया गया वो उनके हित में था,
जी
अभी जो सरकार है अपने हित में कर रही है। पर उस कानून का अर्थ क्या है, उस कानून की भावना क्या है, यानी किसी को बचा लेना ये एक कानून नहीं है, बल्कि कानून के तहत ऐसे अपराध हो ना पाए ये उसकी भावना होनी चाहिए। तो ये भी कहीं हमको नजर नहीं आती है। और बस संविधान एक प्रकार का हमारे यहाँ शाब्दिक गीता बन के रह गया है।
जी सर, क्या उदारीकरण के दौरान में आज के शीर्ष नेतृत्व के नेता का नाम सामने आया था और उस पर उस दौरान उन्होंने जब तक पाक साफ नहीं हो जाते तब तक संसद में वापस नहीं लौटेंगे ऐसा कहा था सर, आज इस तरीके की नैतिकता कहाँ देखते सर?
देखिए, आज तो स्थिति ये है कि संसद में अगर आप प्रतिपक्ष के अपराधी हैं या प्रतिपक्ष में हैं अपराधी नहीं भी हैं तो आपकी सदस्यता खतरे में है। और अगर आप सरकारी पार्टी के हैं या उनके समर्थक हैं तो फिर आपके लिए किसी आर्थिक अपराध से कोई खतरा नहीं है। अभी हम लोग के सामने उदाहरण आया महाराष्ट्र का,
जी
अजीत पवार जी जब पिछली बार सरकार बन रही थी तो अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनी और राज्यपाल ने अजीत पवार को शपथ दिला दी और उसके पहले यानी 24 घंटे के अंदर सीबीआई ने जो है वो अजीत पवार के लिए क्लीन चिट दे दी कि नहीं, इनका ऊपर कोई आरोप नहीं,
जी
क्योंकि सरकार के साथ जाके सरकार में शामिल होना है। फिर वो वापस चले गए, अभी फिर दोबारा उनके ऊपर जो बीच में कार्रवाई शुरू हुई थी फिर खत्म हो गई। तो सरकारें जो हैं वो सरकारें केवल अपने अपराधियों को बचाती हैं और दूसरे के अपराधियों को ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये तो पक्षपात है, ये कोई मतलब संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। संविधान के अनुसार तो हर अपराधी के ऊपर एक सी कार्रवाई होना चाहिए, अगर वो अपराधी है तो उसके ऊपर समान कार्रवाई होनी चाहिए।
जी सर
तो ये जो फर्क है, फर्क देखने में नजर आ रहा है। दूसरा, जो हमारे संविधान में हमको मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स,
जी
उन मूल अधिकारों का सरकारों की ओर से बहुत उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है। अब हमको अधिकार है कि हम संगठन बना सकते हैं, हमको अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण धरना कर सकते हैं। और क्या आज देश की या प्रदेश की राजधानियों में किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति करने का अधिकार है? जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध इतने भारी हैं कि उनके चलते कोई एक प्रकार का कहना चाहिए कि अपने प्रतिरोध की, अपने विरोध की कोई अभिव्यक्ति करना कठिन हो गया है। दिल्ली में जंतर मंतर धरने का स्थान,
जी
आज वहां जाएंगे तो आपको पहले तलाशी देना पड़ेगी, मशीन से गुजरना पड़ेगा, अच्छा तब जाके आप धरना दे पाएंगे, और उसके लिए मंजूरी लेना चाहिए।
जी
तो अगर इतने प्रतिबंध हैं कि आपको कोई, आप अपने विरोध को भी दर्ज नहीं करा सकते हैं, तो ये तो संविधान की भावना का उल्लंघन है ना।
जी
आप कहेंगे साहब संविधान ने हमको अधिकार दिया कि हम कानून बनाए या नियम बनाए, पर कानून और नियम जो आपके हैं वो कानून और नियम उस संविधान की भावना के अनुकूल है क्या? तो ये आज स्थिति है कि संविधान के शब्दों के ऊपर तो लोग चर्चा करते हैं, प्रभावना पर नहीं करते हैं। इसी प्रकार से रोज हम लोग देखते हैं यातायात के सवाल पर। अभी मैं 2 दिन पहले भोपाल में था, तो वहाँ जो अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद वहाँ सरकारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चयन है उसके करने के लिए कमेटी के लोग आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, आज वहाँ प्रधानमंत्री जी शपथ कराने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे भोपाल की आप हालत देखिए कि सब जगह रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो संविधान तो क्या कहता है? संविधान ने तो नहीं कहा कि भाई राष्ट्रपति के लिए अलग सड़क होना चाहिए और प्रधानमंत्री को अलग सड़क होना चाहिए और जनता को अलग सड़क होना चाहिए, परंतु सारे के सारा भोपाल शहर जैसे कर्फ्यू में आ गया हो, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। तो बराबरी कहाँ है? संविधान कहता है कि हर इंसान बराबर है, तो बराबरी कहाँ है? वो बराबरी नहीं है, तो केवल शाब्दिक है परंतु आचरण में कर बराबरी नहीं है। वैश्वीकरण का जो दौर आया, अभी वैश्वीकरण जो है क्या संविधान संगत है? हमारे हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
सर एक सवाल था, और
जी
सर ये हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं
जी
और 3 तारीख को इसके नतीजे भी आए हैं। सर तेलंगाना में हाल ही में जो सर एक प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ लेने से मना कर दिया गया, ऐसा करने के पीछे के यह कारण बताया गया कि यह एक मुसलमान है। सर क्या देखते हैं सर, कितना सही या गलत देखते हैं सर, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व के पक्ष के नेता माने जाते हैं जो शपथ लेने से मना कर।
देखिए, जिन्होंने ये शपथ लेने से इनकार किया है उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान का तो उल्लंघन किया ही है, उन्होंने खुले तौर पर जाहिरा तौर पर एक अपराध किया है। उनको तो गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके जेल बंद करना चाहिए, क्योंकि वो खुलेआम सांप्रदायिक भेदभाव फैला रहे हैं, और उनकी संस्था खत्म कर देना चाहिए, उनकी उनके ऐसे लोगों की संस्था खत्म होना चाहिए। संविधान के अनुसार जो शपथ होती है वो शपथ एक विधायक की होती है, और शपथ कराने वाला जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो जो सबसे वरिष्ठ विधायक होता है वो माना जाता है। वो उसको कोई धर्म की पहचान नहीं है उसमें, भाई धर्म वाला करेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर अपना हिंदू कार्ड फैलाना चाहती है। असली में देखिए गलती जो बड़ी हुई वो बड़ी बड़ी गलती पिछली सरकार ने भी की, चंद्रशेखर राव जी ने, कि उन्होंने वहां पर धर्म के नाम पर आरक्षण दे दिया। इसका तत्काल लाभ भाजपा ने उठाया, उसका विरोध किया कि हम इसको खत्म करेंगे, और जो भाजपा वहां 1 सीट नहीं जीत सकती थी आज वहां 8 सीट भी जीत के आ गई, और उनका वोटा परसेंटेज बढ़ गया। अब इस हिंदू कार्ड को और बढ़ाना चाहते हैं, और उनका प्रयास यह है कि वहां पर 2 पार्टी हो जाए, एक हिंदू पार्टी इनकी हो जाए, दूसरी मुस्लिम पार्टी हो जाए, जो भी बन जाए, कांग्रेस बन जाए, चंद्रशेखर राव की पार्टी बन जाए, और फिर इनका खेल शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा अपराध उन्होंने किया है, जिन्होंने बयान दिया है, और इनके ऊपर मेरी मेरी ये मांग है सरकार से और राष्ट्रपति से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, इन्हें जेल में डालना चाहिए और इनकी संस्था खत्म कर देनी चाहिए।
जी सर। सर
जी
मेरा अंतिम सवाल है कि संसद में जब भी कोई नए कानून बनाए जाते हैं तब संसदों को सही से बोलने नहीं दिया जाता, जो कि कानून बनाकर जनता के हित में कार्य करते हैं, क्या यह सब विपक्ष की आवाज को एक तरीके से दबाना और क्या जनता के हितों को उठाना, जनता की आवश्यकताओं को संसद में रखना, किस कितना सही या गलत देखते हैं
देखिए, संसद में जो लोग चुन के जाते हैं और जो प्रतिपक्ष में चुन के जाते हैं, उनका ये संवैधानिक दायित्व है कि वो जाके अपने समस्याओं को, देश की समस्याओं को चर्चा कर उठाएं। एक बात जरूर मैं कहता हूं परंतु, कि पिछले कुछ वर्षों में संसद में असंसदीय कामों का भी चलन बढ़ा है। हम देखते हैं कि विरोध करने वाले जो हैं वहां नारे लगा कर बैठ चले जाएंगे, बेल में चले जाएंगे और फिर बहिष्कार कर देंगे। तो बहिष्कार और नारेबाजी ये इसके लिए संसद नहीं है। संसद में बहस होना चाहिए, मुद्दों पर विचार को गंभीरता से होना चाहिए। अब उसका ना अनुपालन इस भावना का प्रतिपक्ष कर रहा है और ना उसको सरकार अवसर दे रही है। सरकार को अपने बहाना बनाती है और अपने बिल पारित कर लेती है। अब अभी यहाँ चुनाव आयोग के बारे में बिल पारित हुआ है, जो पहले कानून बना था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इसमें चीफ जस्टिस या उनका नाम नहीं रहेगा। अभी हिंदुस्तान की संसद ने एक कानून पारित कर दिया। इस कानून में यह है कि नहीं, वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, वो तो मंत्री और सरकार लोग ही रहेंगे। अब आप बताइए कि इसका समर्थन कैसे दूसरी पार्टियों ने कर दिया, इस पर क्यों डिबेट नहीं किया। मैंने देखा भी, जहां तक इतने भी अखबार मैंने देखे हैं, मीडिया में देखा है कि इस पर प्रतिपक्ष ने भी कोई गंभीर डिबेट नहीं की कि भाई आपके क्या कर, बस खाली कह देना भरो है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को चाहिए कि सरकार संविधान की भावनाओं को समझे, और प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि प्रतिपक्ष वहां पर तर्कसंगत बहस करे। मतलब संसद जो है ये गाली गलौज का, ये हंगामे का अखाड़ा बन जाए, संसद एक गंभीर बहस का हो, सरकार खुले मन से उस बहस को सुने, समझे और स्वीकार करे, और प्रतिपक्ष जो है वो तर्कों के साथ राष्ट्रीय हित में बहस करे।
जी, तो सर ये थे हमारे साथ रघु सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर क्या यह देश संविधान से चलता है इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर मोबाइल को समझ दिया, इसके लिए बहुत
धन्यवाद। योगी जी आपको, मोबाइल वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे गंभीर सवाल उठाते हैं। धन्यवाद
मोबाइल से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।